नमस्कार भारत, आज है तारीख 10 जुलाई दिन मंगलवार। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। थाईलैंड की गुफा से बच्चों को निकालने के लिए आज तीसरे दिन चलेगा अभियान, 8 बच्चे सुरक्षित निकाले गए। गिरिराज सिंह के जेल में अभियुक्त से मिलने को नीतीश कुमार ने बताया अनुचित, भाजपा ने कहा कुछ भी गलत नहीं।
जेल में जाना ये आरोपित नहीं हो जाता है, दोषी नहीं हो जाता है, ये कानून का काम है और जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद कोई दोषी या निर्दोष साबित होता है।
सुनेंगे पाकिस्तान में आम चुनाव की तैयारियों में अल्पसंख्यक हिंदू किस तरह ले रहे हैं हिस्सा।
जैसे मर्दों को आज़ादी है, इसी तरह से औरतों को कोई भी आज़ादी नहीं है, इसीलिए मैंने ये सोचा कि वडेरों की हुक्मरानी इसको खत्म किया जाए, इनसे छुटकारा पाया जाए, हमारे औरतों में एक ऐसी सरबरा आगे आए।
होंगी खेल की खबरें और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। थाईलैंड की टैमलुंग गुफा में फंसे 12 बच्चों में से 4 और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गुफा से निकाले गए बच्चों को हवाई एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। आज फिर से बचाव कार्य की शुरुआत की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि रविवार रात को हुई बारिश के चलते गुफा में जलस्तर बढ़ गया है, इससे बचाव कार्य में मुश्किल आ सकती है। इससे पहले रविवार को भी 4 बच्चों को बचाने में कामयाबी मिली थी। अब गुफा में 5 लोग और बाकी हैं जिनके जल्द ही बाहर आने की उम्मीद है। ये लोग 23 जून को ये गुफा देखने आए थे, लेकिन बारिश के कारण यहीं फंस गए। ब्रेक्जिट के मसले को लेकर ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के साथ ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने अपनी सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों को खो दिया है। एक दिन पहले ही ब्रेक्जिट के मसले पर मुख्य वार्ताकार डेविड डेविस ने अपना इस्तीफा सौंपा था। 2016 में थेरेसा मे सरकार ने जनमत संग्रह के जरिए यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का फैसला लिया था। अब अलग होने के लिए ब्रिटेन के पास 9 महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के संबंधों को लेकर थेरेसा मे की अपने मंत्रियों से सहमति नहीं बन पा रही है। मंत्रियों को आपत्ति है कि मौजूदा योजना के तहत ब्रिटेन को बहुत कुछ देना पड़ सकता है। वहीं ब्रितानी मंत्रियों के इस्तीफे पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने कहा कि राजनेताओं के आने जाने से उनके द्वारा पैदा की गई समस्याएं खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा,
Politicians come and go, but the problems they have created for the people remain. And the mess
राजनेता आते जाते रहते हैं, लेकिन जो समस्याएं उन्होंने पैदा की हैं अपने पीछे छोड़ जाते हैं। ब्रेक्जिट के कारण हुई गड़बड़ी यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के संबंधों के इतिहास में सबसे बड़ी समस्या है और इसका समाधान अभी बहुत दूर है। ये थे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क के शब्द। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने शपथ ग्रहण के बाद अपनी कैबिनेट की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपने दामाद बेराट एल्बेरेक को वित्त मंत्री का पद सौंपा है, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद से ही तुर्की की मुद्रा के मूल्य में 2% से ज्यादा की गिरावट आई है। अर्दोआन ने राष्ट्रपति की नई शक्तियों के साथ इस पद को संभाला है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे तुर्की में लोकतंत्र कमजोर होगा। शपथ ग्रहण के दौरान अर्दोआन ने जनता से तुर्की को एक मजबूत देश बनाने का वादा किया है। उन्होंने कहा,
Bugün burada milletimize 95 yıllık cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla
आज हम अपने लोगों से एक नए सिस्टम के तहत अपने देश को आगे बढ़ाने का वादा करते हैं। हम एक मजबूत संसद, मजबूत सरकार और मजबूत तुर्की के लिए इस मौके का जितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के जज के नाम की घोषणा करने वाले हैं। इसके लिए 4 नामों का चयन किया गया है। चारों उम्मीदवार इस समय यूएस अपील कोर्ट में नियुक्त हैं। इन चारों के नाम डोनाल्ड ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट के 25 उम्मीदवारों की उस सूची में भी थे जिसका पहला वर्जन 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जारी किया गया था। इस सूची से ट्रंप को कंजर्वेटिव्स को यह भरोसा दिलाने में मदद मिली थी कि कोर्ट की रिक्तियां भरने में उनकी पसंद का ध्यान रखा जाएगा। वर्तमान जज एंथोनी कैनेडी को मॉडरेट कंजर्वेटिव के तौर पर देखा जाता है। बीबीसी को अपनी पड़ताल में ऐसे और लोग मिले हैं जिन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पार्टियों में महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है। 80 और 90 के दशकों में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टियों में जाने वाले अतिथियों का कहना है कि उनकी पार्टियों में अधेड़ उम्र के पुरुष नौजवान महिलाओं का फायदा उठाने की कोशिश करते थे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं। और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। उत्तरी थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को निकालने के लिए कल दूसरे दिन भी अभियान चला। दो हफ्ते से अधिक समय से फंसे 12 बच्चों और एक कोच में से रविवार को 4 बच्चों को निकाल लिया गया था। कल चले बचाव अभियान में 4 अन्य बच्चों को और निकाला गया। कल रात बचाव कार्य रोक दिया गया, जिसके बाद आज सुबह से फिर इसके शुरू होने की संभावना है। इस बचाव कार्य में 90 से अधिक गोताखोर लगे हुए हैं और उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले की ताजा जानकारी के लिए मैंने अभी कुछ देर पहले उत्तरी थाईलैंड में मौजूद बीबीसी संवाददाता प्रतीक्षा घिल्डियाल से बात की।
देखिए, कल रेस्क्यू मिशन का दूसरा दिन था और कल 4 और लड़कों को गुफा से निकाला गया, तो कुल मिलाकर अब 8 लड़के बाहर आ गए हैं। वो शांगराय नाम के एक शहर में एक हॉस्पिटल में लाए गए हैं। मैं उसी हॉस्पिटल के पास हूँ पिछले 2 दिन से, और लगातार हमने देखा कि मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। सिर्फ थाई मीडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की मीडिया यहाँ पर मौजूद है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर आके देखते हैं कि क्या हो रहा है। समय समय पर एम्बुलेंसेज आती हैं जब लड़कों को निकाला जाता है और वो हॉस्पिटल के अंदर जाती हैं। हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी इमारत है, पूरे इलाके में जहाँ तक मैंने देखा शायद सबसे बड़ी इमारत है। उसकी 8वीं मंजिल पर कहा जा रहा है कि इन लड़कों को रखा जा रहा है, उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है ये देखने के लिए कि उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है या फिर किसी और तरह की तकलीफ तो नहीं है।
जी, जो तीसरे दिन का बचाव अभियान है वो अब कितने बजे तक शुरू होने की संभावना है?
जी देखिए, ये जो मिशन है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मिशन है और काफी खतरनाक मिशन है, क्योंकि अगर आपने गुफा की ग्राफिक्स या पिक्चर्स देखे हैं तो अंदर बहुत सारे अंदर डाइविंग करनी पड़ती है जहाँ पर बाढ़ है, थोड़ा हाइकिंग करनी पड़ती है, चलना पड़ता है, तो और पूरा जो टाइम लगता है अंदर जाने में और वापस लड़कों को लेकर आने में वो 11 घंटे है। तो जो ये जो बहुत ही स्पेशलिस्ट ड्राइवर्स हैं, इनमें से 13 अंतर्राष्ट्रीय ड्राइवर्स बहुत ही स्पेशलिस्ट ड्राइवर्स हैं, ये लोग रोज जा रहे हैं 90 ड्राइवर्स के अलावा। तो इनको ये लोग ये अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, इनको भी आराम की जरूरत है, इनको भी रेस्ट की जरूरत है। तो जब वो पूरा रेस्ट ले पाएंगे उसके बाद ये दोबारा अंदर जाएंगे। तो बताया जा रहा है कि कल रात को जब 4 और लड़के बाहर आए तो बोला गया कि 20 घंटे के बाद फिर से तीसरे दिन का रेस्क्यू जारी होगा। लेकिन पहले दिन भी उन्होंने 20 घंटे के बाद बोला था, लेकिन उससे जल्दी ही रिज्यूम कर दिया था रेस्क्यू ऑपरेशन। तो देखते हैं आज कितनी जल्दी वो फिर से रिज्यूम करेंगे।
थाईलैंड में बचाव अभियान का ताजा हाल दे रही थी प्रतीक्षा घिल्डियाल।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में पहचाने जाने वाला मुंबई शहर इन दिनों बारिश से बेहाल है। लगातार बारिश के कारण कई हिस्सों में पानी भर जाने से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। पहले भी बरसात के मौसम में मुंबई में इसी तरह के हालात देखने को मिलते रहे हैं। हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र मुंबई में वैज्ञानिक अजय कुमार से बात की और जानना चाहा कि कहीं मुंबई को मौसम के बिगड़े हुए मिजाज की मार तो नहीं झेलनी पड़ रही।
बारिश तो मुंबई में ज़्यादा होता है, सभी वेस्ट कोस्ट में ज़्यादा है कंपेयरिंग टू अदर प्लेस। वेस्ट कोस्ट बारिश ज़्यादा ही है, तो मुंबई में कोई अलग बात नहीं है, बारिश होता है मुंबई में और सभी वेस्ट कोस्ट में, लेकिन इस बार नॉर्मल से अभी हमें ज़्यादा मिला है।
जैसा कि आपने कहा कि सामान्य से ज़्यादा, ये जो भारी बारिश का सिलसिला है ये कब तक जारी रहेगा? आने वाले कितने दिनों तक इस तरह से हम भारी बारिश देखते रहेंगे?
बे ऑफ बंगाल में सर्कुलेशन 1/1 बन रहा है, इसके वजह से बारिश हो रहा है। तो अभी एक सर्कुलेशन है छत्तीसगढ़ एरिया पर, और एक सर्कुलेशन गुजरात एरिया पर है, तो इसके लिए बारिश हो रहा है। अभी ये 5 दिनों में हमने फोरकास्ट दिया है वेस्ट कोस्ट में बारिश रहेगा, एक और 2 जगह एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल भी हो सकता है। लेकिन अभी 13 तारीख एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है बे ऑफ बंगाल में, तो ऐसा बारिश होता ही रहेगा।
आपको जैसे पता चल जाता है, आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि कहाँ पे कितनी बारिश होने वाली है, ज्यादा बारिश हो सकती है, तो आप एक अलर्ट जारी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद बड़ी समस्याएं आती है, तो क्या आपको लगता है कि जो जिनको कदम उठाने चाहिए वो समय पे कदम उठा पाते हैं, या ये बारिश ही कुछ इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो इंतजाम है वो धरे के धरे रह जाते हैं?
वेस्ट कोस्ट में जो दूसरा जगह है उसी तरह मुंबई में होता है। मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर वो जियोग्राफी वो अलग है, इसीलिए वाटर लॉगिंग वगैरह होता है। रत्नागिरी में कितना होता है, सिंधुदुर्ग में होता है, उसी तरह मुंबई पालघर सभी जगह बारिश होता है, मानसून में वो नॉर्मल है।
मुंबई में भारी बारिश के क्या कारण हैं, बता रहे थे मौसम वैज्ञानिक अजय कुमार। बिहार में इस समय राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को नवादा जेल जाकर दंगा मामले के अभियुक्तों से मुलाकात की थी। ये मुलाकात तीसरे दिन भी बिहार की राजनीति में चर्चा में रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे अनुचित बताया। वहीं भाजपा का कहना है कि इस मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना में अपने गठबंधन सरकार की सेहत, सीट बंटवारे, एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड जैसे कई मुद्दों पर सवालों के खुलकर जवाब दिए। गिरिराज सिंह का नवादा जेल जाकर दंगा अभियुक्तों से मिलना अभी भी चर्चा में है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुलाकात पर भी उनसे सवाल हुए। नीतीश ने इस मुलाकात को अनुचित बताया। नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा कि बिहार में जदयू भाजपा में कोई विवाद नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह के मुलाकात को अनुचित बताए जाने पर भाजपा सहमत नहीं है। भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल कहते हैं,
जेल में जाना ये आरोपित नहीं हो जाता है, दोषी नहीं हो जाता है, ये कानून का काम है और जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद कोई दोषी या निर्दोष साबित होता है। जेल में हर व्यक्ति बंद दोषी नहीं होता है, और क्षेत्र का मामला था, अगर जाकर करके मंत्री अगर मिल रहे हैं, मुझे लगता है इसमें कोई जो है से गलत नहीं है।
बीते एक महीने से ज्यादा समय से जदयू के कई वरिष्ठ नेता लगातार यह कहते रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जदयू बड़ी पार्टी की भूमिका में रहेगी। नीतीश ने कल इन दावों को हवा हवाई करार दिया।
सब चीजों पर कोई डिबेट की जरूरत नहीं, वक्त का इंतजार कीजिए, आपसी बातचीत से जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तो यूं ही बात चल रही है, ये सब जिसको नहीं कहते हवा में बात चलती है। कभी कोई कुछ बोल दिया तो उसका कोई दूसरा जवाब दे दिया, कोई तीसरा जवाब दे दिया, ये सब चलता रहता है, लेकिन उसका अभी कोई आधार नहीं।
विधायक और राजद प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि ऐसा कहकर नीतीश एक बार फिर अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं।
पलटी मार कब पलटी मारेंगे इनको खुद का पता नहीं है। कल तक अपने प्रवक्ताओं से बड़े भाई होने का नाटक रच रहे थे कि और हम बड़े भूमिका में हैं और बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। मेरा मानना है कि नीतीश जी सृजन घोटाला में इनके दामन दागदार हो चुके हैं, तो जांच एजेंसियां इनके गिरिवास तक किसी भी समय पहुँच सकती है। ये भय है इनको और भय व्याप्त का प्रकटीकरण है कि मजबूरन ये जितने भी सीट इनको मिलेगा उसमें ये स्वीकार करेंगे।
बीते दिनों नीतीश ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद को फोन कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। इस पर लालू के छोटे बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश ने ऐसी बातों को मानवीय संवेदनाओं से परे बताया। वहीं लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप द्वारा उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाए जाने पर नीतीश ने कहा कि ये सब प्रचार पाने के हथकंडे हैं। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भाजपा का लग रुख। पिछले कई सालों से जंग से ग्रस्त अरब देश यमन से 74 मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली लाया गया है। उत्तरी अफ्रीकी अरब देश में शिया हूथी विद्रोहियों और सरकारी फौज के बीच युद्ध जारी है। सऊदी अरब के नेतृत्व में 9 देशों का एक गठबंधन सरकारी फौज की मदद कर रहा है, जबकि ईरान पर हूथी विद्रोहियों की मदद करने का आरोप लगता है। लड़ाकू विमान से बरसने वाले बम और लड़ाकों के चलाए जा रहे रॉकेट लॉन्चर आम लोगों पर कहर बरपा रहे हैं। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने यमन से आए इन मरीजों और उनके डॉक्टर से मुलाकात की। सुने ये रिपोर्ट।
चॉकलेट का वो डब्बा दूर से चमक रहा था या कोई खिलौना था। 10 साल का जैद उधर लपका और पीछे नन्हे नन्हे पांव से दौड़ लगाता उसका 6 साल का छोटा भाई सलीम। जैद ने पहले पहुंचकर डब्बे को हाथों में उठा लिया, लेकिन तभी सैकड़ों बल्ब जैसी तेज रोशनी हुई और आसपास की जमीन तक को हिला देने वाला धमाका। जैद के दोनों पांव चमड़े और चंद टूटी हड्डियों से लटके उसके जिस्म से झूल रहे थे। बारूदी सुरंग से निकली किर्चियां मांस में धस गई थीं और आसपास खून ही खून। जैद के पिता खालिद सलीम मोहम्मद उसके पास अस्पताल के बिस्तर पर बैठे हुए कहते हैं,
वो बारूदी सुरंग थी जिसे उसने उठा लिया और वो फट गई। 3 सालों से इसकी यही हालत है।
जैद का बायां पैर डॉक्टरों को काटना पड़ा, दाहिना किसी तरह जिस्म से लगा है। जैद यमन की जंग में गंभीर रूप से घायल हुए 74 दूसरे मरीजों के साथ यूएई सरकार की मदद से इलाज के लिए दिल्ली लाए गए हैं। अरब देश यमन में लगभग 4 सालों से जारी जंग में संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कम से कम 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 55,000 से ज़्यादा घायल हुए हैं, लाखों बेघर हैं। पेशे से टीचर खालिद बताते हैं कि सलीम के शरीर के किसी हिस्से को अल्लाह के करम से कोई नुकसान नहीं हुआ और उसका हाथ अब फिजियोथेरेपी की वजह से बेहतर हो रहा है। दिल्ली के रॉकलैंड अस्पताल के इमरजेंसी मेडिसिन के प्रोफेसर तमोरीश कोले कहते हैं,
ये जो पर्टिकुलर पेशेंट है इनको अचानक ब्लास्ट हुआ और ये इंजरीज हुआ, तो वहाँ पर जो जितना इसको मदद मिला है वो एक पैर इसको जोड़ पाया, दूसरे पैर को एम्पुटेट करना पड़ा। तो अभी जो आया है ये रिवीजन सर्जरीज के लिए आया है। हमारा मकसद ये है कि इनको प्रोस्थेसिस लगा के और रिवीजन सर्जरी करके इनको हम चलते सके।
तमरीश कोले बताते हैं कि युद्ध जैसी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं के मूलभूत ढांचे जैसे अस्पताल बमबारी का शिकार हो जाते हैं, बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती हैं, ऑपरेशन थिएटर का भी वही हाल होता है। दवाओं की सप्लाई रुक जाती है, लेकिन मरीजों की तादाद कई गुना बढ़ जाती है। तो जाहिर है उन हालात में प्राथमिकता होती है लोगों की जान बचाना। जैद को पिछले करीब 3-4 घंटों से खाना नहीं मिला है और वो पिता से बार बार उसकी मांग करता है जो उसे किसी तरह संभालते हैं। जैद के कमरे की गलियारी के दूसरे छोर पर 2 बेड वाला एक कमरा है जिसमें मौजूद प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हैं 56 साल के मोहम्मद अली। यूं तो वो पहली बार भारत आए हैं, लेकिन वो हिंद को जानते रहे हैं।
हिंद से जिसे हम जानते हैं वो हैं इंदिरा गांधी। हम हिंदुस्तान से वाकिफ हैं, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना।
धर्मेंद्र बहुत अच्छा है, वो हंसते हुए हमसे कहते हैं और फिर मरीजों की देखभाल के लिए लगे अधिकारी जस्सार साहले से शिकायत करने लगते हैं कि टीवी पर हिंदी फिल्मों का चैनल नहीं आता है। मजदूरी छोड़कर बंदूक उठाने वाले मोहम्मद अली को इंतजार है एक नए प्रोस्थेटिक लेग का, जिसके बाद वो फिर से लड़ने को तैयार हैं। अली कहते हैं कि अब तो वो विशेष किस्म की हेवी मशीन गन महारत के साथ चला लेते हैं। मोहम्मद अब्दुल को महारत थी लोगों के इलाज में, लेकिन उनका पॉली क्लिनिक तबाह हो चुका है। उनके साथ काम करने वाले 2 सर्जन उल्फत और मोना को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। पांव के अपने जख्म को दिखाते अंग्रेजी में हमसे बातें करने के बीच मोहम्मद अब्दुल अपने साथ बीती याद कर भावुक को उठते हैं।
दाएश और अलकायदा से भी ज्यादा क्रूर है वो बच्चों को भी नहीं छोड़ते। मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन शरणार्थी शिविर में रहने को मजबूर हूं।
यमन से आए 74 मरीजों के दल में युद्ध में घायल हुई औरतें भी हैं, लेकिन वो हमसे बातें करने से मना कर देती हैं। दिल्ली के इस अस्पताल में मौजूद इन यमनी मरीजों के जहन में मुल्क में हूथी लड़ाकों और सरकारी फौजों के बीच जारी युद्ध के मंजर ताज़ा हैं और उस यमन की याद भी जो अब वैसा कभी नहीं बन सकता। फैसल मोहम्मद अली, BBC, दिल्ली।
यमन से इलाज कराने दिल्ली आए मरीज। अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों का हाल। कमलेश बताएं क्या कुछ खास है आज के अखबारों में।
आज के अखबारों में हम अंग्रेजी अखबारों की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस में खबर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन नोएडा में गए थे और उन्होंने सैमसंग की एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया जहां मोबाइल प्लांट का उद्घाटन किया
जी,
है।
बाकायदा कल मेट्रो से गए हैं, हर जगह टीवी में,
बिल्कुल उसकी तस्वीरें अखबारों में दी भी गई हैं और बताया जा रहा है सबसे बड़ी फैक्ट्री है अब तक की दुनिया की। और इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में निर्भया मामले से जुड़ी खबर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है, सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है जिसमें धारा 377 पर बताया गया है कि आज सुनवाई होगी। सरकार ने कहा था कि इस पर सुनवाई देरी से की जाए, स्थगित कर दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया।
कमलेश, आज के अखबारों में मैं देख रहा हूं कि हिंदी के अखबारों में ज्यादातर पहले पन्ने पर खबर है कि बागपत जेल में माफिया मुन्ना बजरंगी की ताबड़तोड़ गोलियां दाग कर हत्या, अमर उजाला की पहली खबर है
जी। और कई अंग्रेजी और हिंदी अखबारों ने इस पर खबर दी है। आपको बता दें कि बागपत जेल में बंद थे मुन्ना बजरंगी और जब वो अपनी बैरक से बाहर थे तब साथ वाली बैरक में बैठे सुनील राठी ने उन पर 6 गोलियां चला दी और उनका उस वक्त कहा सुनी भी हुई थी सुनील राठी से, जो आसपास के लोगों ने बताया है वहां पर। और कहा जा रहा है कि मुन्ना बजरंगी की बसपा के पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी के मामले में पेशी होनी थी और मुन्ना बजरंगी पूर्वांचल के डॉन के नाम से कुख्यात थे, उन पर 7,00,000 का इनाम भी पुलिस रख चुकी थी। इसके अलावा उन पर मतलब हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट से जुड़े 40 मामले थे। और आपको इसके अलावा हम बताएं तो दैनिक जागरण में एक खबर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के सीधे प्रसारण की बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सरकार एक अलग चैनल लॉन्च करती है तो सीधा प्रसारण सुप्रीम कोर्ट कर सकता है अपनी कार्रवाई का, जो पारदर्शिता की तरफ भी एक कदम की बात
मतलब हम है। क्या कहते हैं, संसद, लोकसभा, राज्यसभा के बाद अब कोर्ट की भी कार्रवाई देख सकते हैं।
जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश अखबारों की समीक्षा के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां इन दिनों मतदाता चुनावी बुखार की गिरफ्त में हैं। प्रचार अभियान चरम पर पहुंच चुका है और वोटरों को रिझाने के लिए उम्मीदवार हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी ने सिंध प्रांत के थरपारकर इलाके का दौरा किया, जहां पर देश के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं की अच्छी खासी तादाद है। बीबीसी ने ये जानने की कोशिश की कि इन चुनावों में पाकिस्तान के हिंदू कैसे हिस्सा ले रहे हैं।
महाराज घनश्याम पाकिस्तान में थरपारकर के इलाके नगर पारकर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। भारत की सरहद से जुड़े इस इलाके का ये मंदिर अब सुनसान रहता है। 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाली जंग के बाद नगर पारकर के बहुत से हिंदू परिवार यहां अपना सब कुछ छोड़ भारत चले गए थे। इन्हीं परिवारों के लिए घनश्याम के दादा ने ये मंदिर बनाया था, लेकिन हिंदुओं की हिजरत के बाद घनश्याम का खानदान भी थरपारकर के एक और शहर इस्लामकोट जा बसा। घनश्याम का आरोप है कि मंदिर के आसपास की जगह उनके खानदान की थी, जिसे अब यहां के जमींदारों ने हड़प लिया है।
मेरा बाप बोलता था तो ये एरिया जो है करीबन 12,000 फुट का है, वो जो रईस है ना इधर के, वो बोलते ये था ही हमारा, तुम्हारा ये मंदिर है खाली। मंदिर के पास में जो प्लाट था मेरे दादे के नाम का, माया राम ब्राह्मण के नाम, जो कब्जा थी करा था ना रईस ने, उसको हमने बोला, मेरे भाई ने बोला, तो वो मेरे भाई से गले पड़ गया, इधर गले में पकड़ा और बोला तुम जाके कोर्ट करो जो तुम्हारे को चाहे। अभी हम गरीब आदमी, हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, कहाँ से लाएं।
तकरीबन 100 किलोमीटर दूर मिट्टी शहर में थरपारकर के दलित समाज से उभरी सुनीता परमार एक मोटरसाइकिल रिक्शे पर अपने ससुराल की कुछ महिलाओं के साथ छोटा सा काफिला लिए चुनाव प्रचार में मसरूफ हैं।
नतीर जो, नस्तार जो।
सुनीता कहती हैं कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत से पैसे चाहिए, लेकिन वो मानती हैं कि अगर गरीबों के खिलाफ होने वाले भेदभाव और औरतों से होने वाली नाइंसाफी को मिटाना है तो मैदान में उतरना जरूरी है।
ये अब देखें ना, जो ये हमारा थरपारकर है, ये पसमानदा इलाका है, यहाँ पे हमेशा बड़े लोगों को हुक्मरान है, हमारे मिडिल क्लास के जो लोग हैं इनमें कोई इन्हें आगे नहीं आया लाने देते, क्योंकि जो औरतें हैं वो हमेशा बेचारी थर की जो दीवार अंदर रहती हैं वो कभी भी बाहर नहीं निकलती, उनको जैसे मर्दों को आज़ादी इसी तरह से औरतों को कोई भी आज़ादी नहीं है। इसीलिए मैंने ये सोचा क्यों ना ये जो वडेरों की हुक्मरानी इसको ख़त्म किया जाए, इनसे छुटकारा पाया जाए, हमारे औरतों में एक ऐसी सरबरा आगे आए ताकि वो हमारी औरतों के आवाज़ को बुलंद कर सके।
हिंदू समाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, लेकिन माना जाता है कि अभी भी बंटवारे की विरासत का शिकार हैं। थरपारकर की करीब आधी आबादी हिंदू है, लेकिन यहाँ से किसी भी हिंदू उम्मीदवार का चुनाव जीतना मुश्किल है, बशर्ते कि उन्हें किसी बड़ी राजनीति पार्टी का समर्थन हासिल हो। और पाकिस्तान दलित मूवमेंट के मुखी डॉक्टर सोनू खंगारानी मानते हैं कि निचली जाति के हिंदुओं को ऐसा समर्थन नहीं मिलता। उनकी राय में राजनीतिक दलों ने उनके वोट डालने के हक को निरर्थक बना दिया है।
यहाँ पे देखा जाए तो 33% एक्सक्लूसिव वोट बैंक ऐसा है जो सिर्फ शेड्यूल कास्ट का है मिला के। अब 33% आबादी के लिए कहीं पे भी पावर शेयरिंग नहीं है, कहीं पे भी कोई उसकी नुमाइंदगी नहीं है। थरपारकर में इस सपा भी यही सूरत हाल है। उसकी एक वाजह मिसाल ये है कि किसी को 20 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, फॉर्म भरे हुए, नन ऑफ देम गॉट द टिकट।
लेकिन थरपारकर में एक हिंदू ऐसे हैं जिन्हें कामयाबी मिली है। डॉक्टर महेश कुमार मालानी ऊंची जाति से हैं। उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली में मानोनीत किया है। डॉक्टर महेश कुमार का मानना है कि व्यवस्था किसी के साथ भेदभाव नहीं करती।
यहाँ कोई भी तफरुक नहीं है, मुस्लिम और ना मुस्लिम है, हम सब एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे यहाँ रह रहे हैं। और कभी किसी ने भी ये तस्वर नहीं किया है कि ये किस मज़हब का है। और हमें यकीन है कि पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो ये नहीं देखेंगे कि ये मुस्लिम है या ये नॉन मुस्लिम है, वो ये देखेंगे कि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है। और हम मेहनत करेंगे, हमारे वर्कर मेहनत करेंगे, हम जीतेंगे।
पाकिस्तान में उमरकोट और थरपारकर दो जिले ऐसे हैं जहाँ हिंदुओं की संख्या करीब 50% है। यहाँ 3 राष्ट्रीय असेंबली और 7 राज्य सत्र की सीटें हैं। डॉक्टर महेश कुमार एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिना रिजर्वेशन वाली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे कई हिंदू उम्मीदवार हैं जो बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो शायद ही जीत पाए, लेकिन कोशिश यही है कि उनकी अनदेखी न की जाए। शुमाइला जाफरी, BBC, थरपारकर, पाकिस्तान।
पाकिस्तान में चुनाव अभियान में भाग लेते हिंदू। और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। रूस में जारी फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने उरुग्वे को 2-0 से और बेल्जियम ने ब्राजील को 2-1 से हराया था। फ्रांस 1998 की चैंपियन रही है, जबकि बेल्जियम साल 1986 में चौथे स्थान पर रही थी। तब फ्रांस ने ही उसे 4-2 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया था। उधर कल विंबलडन में दूसरे सप्ताह के मुकाबले शुरू हुए। तरोताजा होकर सेंटर कोर्ट पर उतरे शीर्ष वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने कल चौथा दौर ऐसे पार किया जैसे वो उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। पहले सेट में उन्होंने अपने विरोधी 22वीं वरीयता हासिल फ्रांस के एड्रियन मैनारिनो को 6-0 से हराया। दूसरे सेट में मैनारिनो संभले लेकिन 7-5 से हार गए। तीसरे सेट को भी फेडरर ने 6-4 से अपने नाम किया। पुरुष एकल वर्ग में ही स्पेन के राफेल नडाल भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने गैर वरीयता हासिल चेक गणराज्य के जिरी वेसेली को 6-3, 6-3, 6-4 से हराया। उनके अलावा केविन एंडरसन ने फ्रांस के जुझारू गेल मॉनफिल्स को 7-6, 7-6, 5-7, 7-6 से हराया। महिला एकल वर्ग में 7 बार की विंबलडन चैंपियन अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने क्वालिफायर रूस की एवगेनिया रोडिना को 6-2, 6-2 से हराया। लेकिन 7वीं वरीयता हासिल चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा नीदरलैंड्स की किकी बर्टेंस से 6-3, 7-6 से हारकर बाहर हो गई। पुरुष युगल वर्ग में भारत के द्विज शरण और उनके जोड़ीदार न्यूजीलैंड के आर्टेम सिताक क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इनके बीच जापान के केई निशिकोरी ने भी क्वालिफायर लातविया के अर्नेस्ट गुलबिस को विंबलडन से सायोनारा कहने को मजबूर कर दिया। निशिकोरी ने गुलबिस को 4-6, 7-6, 7-6, 6-1 से हराया।
वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन चलते चलते मुख्य समाचार कमलेश मटेनी से।
BBC समाचार। थाईलैंड की टैमलुंग गुफा में फंसे 12 बच्चों में से 4 और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गुफा से निकाले गए बच्चों को हवाई एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। आज फिर से बचाव कार्य की शुरुआत की जाएगी। ब्रेक्जिट के मसले को लेकर ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के साथ ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने अपनी सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों को खो दिया। एक दिन पहले ही ब्रेग्जिट के मसले पर मुख्य वार्ताकार डेविड डेविस अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अरदोगान ने शपथ ग्रहण के बाद अपनी कैबिनेट की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपने दामाद बेराट एल्बेरेक को वित्त मंत्री का पद सौंपा है, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद से ही तुर्की की मुद्रा के मूल्य में 2% से ज्यादा की गिरावट आई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रेट कैवेनो के नाम की सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर घोषणा कर दी है। 53 साल के कंजर्वेटिव जज ब्रेट ने US कोर्ट ऑफ अपील्स में अपनी सेवाएं दी हैं। BBC समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। कार्यक्रम को फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। मोहम्मद शाहिद को दें अनुमति। नमस्कार।